अभी आप सुन रहे थे चिंतन के अंतर्गत ईश्वर भक्ति पर स्वामी विवेकानंद के विचार। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए अब सुनते हैं वंदना के अंतर्गत भजन, जिसमें स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।
मारा रे गिरिधर गोपाल, मारा
अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में. आइए सुनते हैं एक और भक्ति गीत उन्हीं की आवाज में फिर से एक बार. सुन रहे थे वंदना के अंतर्गत भक्ति संगीत. स्वर थे लता मंगेशकर के और संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का. ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है. अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा.
ये ऑल इंडिया रेडियो है. अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए. मुख्य समाचार. निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता अमित शाह और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जनसभाओं पर रोक लगा दी है. कांग्रेस भाजपा और वाम दलों ने दुष्कर्म पर विवादित बयान के लिए मुलायम सिंह यादव की आलोचना की है. भारत ने आज ओडिशा तट से दूर वहीर द्वीप से सतह पर मार करने वाले परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक के रात्रि में इस्तेमाल क्षमता का परीक्षण किया. असम में सुरक्षा बलों ने दीमा हसाओ जिले के हाफलांग में लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किए हैं. चौथे चरण में चार राज्यों में लोकसभा की 7 सीटों और सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों पर मतदान कल होगा. निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी अपराधों के मामले में तुरंत कार्रवाई को कहा है. क्रीमिया की विधानसभा राष्ट्रीय परिषद ने आज नया संविधान स्वीकार कर लिया है। समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश में कोई भी जनसभा करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि इन दोनों नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों की वजह से जनसभाएं करने की अनुमति न दी जाएं। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को कल शाम 5 बजे तक इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और आपराधिक मामला चलाने के लिए भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कार विरोधी कानून पर समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बयान को घिनौना और स्तब्ध करने वाला बताया है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि श्री यादव का बयान महिला विरोधी है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उधर वामपंथी दलों ने दुष्कर्म के बारे में बयान के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से माफी की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा क्रात ने कहा कि श्री यादव का बयान हैरान कर देने वाला है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आज ओडिशा तट से दूर व्हेलर द्वीप से सतह पर सतह मार करने वाले परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 के रात्रि में प्रयोग क्षमता का परीक्षण किया। ये मिसाइल व्हेलर द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज के प्रक्षेपण परिसर 4 से रात 11:10 पर छोड़ी गई। 15 मीटर लंबी और एक चरण के ठोस ईंधन वाली ये मिसाइल 700 से 1200 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती है और 1000 किलोग्राम युद्धक ले जाने में सक्षम है। असम में सुरक्षा बलों ने दीमा हसाओ जिले के हाफलांग में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किए हैं। राज्य में कल दूसरे चरण में सिलचर, करीमगंज और स्वशासित जिले की सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AP राउत ने कहा कि दो उग्रवादी गुटों ने कार्बी आंगलोंग जिले में अनिश्चितकालीन बंद समाप्त कर दिया है। श्री राउत ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। सेना, कोबरा फोर्स और असम पुलिस के कमांडो दीमा हसाओ कार्बी आंगलोंग जिले में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रण बढ़ा रही हैं। इस चरण में असुरक्षित माने जाने वाले मतदान केंद्रों पर 418 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। 803 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। 362 मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी जबकि 68 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। 7 लोकसभा सीटों और 32 सदस्यों वाले सिक्किम विधानसभा के लिए कल चौथे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे उनमें असम में 3, सिक्किम में 1, गोवा के 2 और त्रिपुरा की 1 सीट शामिल है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भी सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों में कल दोबारा मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों में पिछले बुधवार को वोट डाले गए थे। लोकसभा सीट के मतदान के दौरान इन केंद्रों पर चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद यहां दोबारा मतदान कराया जा रहा है। ये समाचार ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी ये समाचार उपलब्ध हैं। हमारे प्रमुख बुलेटिनों के मुख्य समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी देखे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी अपराधों के मामलों में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने ये निर्देश चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक नेताओं द्वारा हाल की भड़काने वाली टिप्पणियां और मानकों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में आयोग ने उनसे आचार संहिता के उल्लंघन और उत्तेजक टिप्पणियों की प्रतिदिन समीक्षा करने को कहा है। श्रीलंका की सेना ने आज दावा किया कि उसने देश में अलगाववाद पुनर्जीवित करने के एलटीटीई आतंकवादियों के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। आज कोलंबो में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अलगाववाद पुनर्जीवित करने के लिए धन यूरोप से हवाला के जरिए आता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्थानीय एलटीटीई कार्यकर्ताओं ने इस धन से सुरक्षित मकान बनवाए हैं और वाहन तथा अन्य संसाधन जुटाए हैं। सेना ने कहा है कि ये तथ्य कल एलटीटी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सामने आया, जिसमें 3 पूर्व एलटीटी नेता मारे गए थे। 5 साल पहले श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्ति के बाद देश में एलटीटी गतिविधियों के बारे में ये पहला समाचार है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका में आज एक आत्मघाती हमले में एक कबायली प्रमुख की हत्या कर दी गई। खबरों में प्रांतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि आज दोपहर बाद उरगान जिले में कबायली प्रमुख बाबरी गुल जरदान पर हमला हुआ। हमलावर ने पहले उन पर गोली चलाई, जब वो घायल हो गए तो अपने विस्फोटकों से धमाका कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और 3 अफगान नागरिक जख्मी हो गए। पक्तिका प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगा है और अफगानिस्तान के अशांत प्रांतों में गिना जाता है। इस बीच अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने हमले की निंदा की है और इसे अफगानिस्तान के दुश्मनों की बेहद कायरतापूर्ण करतूत बताया है। पाकिस्तान में अशांत उत्तर पश्चिम में ताजा हिंसा में कम से कम 16 उग्रवादी मारे गए। प्रतिबंधित तालिबानी प्रतिबंध गुटों के बीच आपसी लड़ाई में अब तक 40 जाने गई हैं। तहरीक तालिबान के 2 प्रतिद्वंदी गुटों में कुछ दिन पहले संघर्ष शुरू हुआ था। झगड़े की वजह एक दूसरे के क्षेत्र में दखल अंदाजी बताई गई है। सरकार के साथ 40 दिन के संघर्ष विराम की समाप्ति के एक दिन बाद संघर्ष की ये ताजा झड़प हुई है। विश्व भर की एयरलाइंस इस बात का अध्ययन कर रही है कि पिछले महीने मलेशिया एयरलाइंस का विमान लापता होने की घटना को दोबारा होने से किस प्रकार रोका जाए। 240 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA ने कहा है कि वो विमानों के स्थान और समय का वास्तविक रूप से पता लगाने में सुधार के लिए एक पैनल का गठन कर रहा है। ITA के प्रवक्ता पैरी फ्लिंट ने कहा कि ये नया पैनल विमान तंत्र के उड़ान के कामकाज के आंकड़ों की बजाय विमान के स्थान और समय का वास्तविक रूप से पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्रीमिया की विधानसभा राष्ट्रीय परिषद ने आज नया संविधान स्वीकार कर लिया है। आज मतदान के समय सदन में सिर्फ 88 सदस्य मौजूद थे और सभी ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। संविधान में कहा गया है कि रूस संघ के अंतर्गत क्रीमिया एक कानूनी और लोकतांत्रिक राज्य है और वो रूस का एक अभिन्न अंग है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता अमित शाह और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जनसभाओं पर रोक लगा दी है। कांग्रेस, भाजपा और वामदलों ने दुष्कर्म पर विवादित बयान के लिए मुलायम सिंह यादव की आलोचना की है। भारत ने आज ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से सतह पर मार करने वाले परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 के रात्रि में इस्तेमाल क्षमता का परीक्षण किया। असम में सुरक्षा बलों ने दीमा हसाओ जिले के हाफलांग में लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किए। चौथे चरण में 4 राज्यों में लोकसभा की 7 सीटों और सिक्किम की विधानसभा की 32 सीटों पर मतदान कल होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी अपराधों के मामलों में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचारों का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भारत भारती। विषय है भारतीय कृषि में पर्वों की अवधारणा, भारत के फलोत्सव, इतिहास का रक्तिम पृष्ठ, जलियांवाला बाग। प्रस्तुति है मोहम्मद इसहाक खान की और वार्ताकार हैं डॉक्टर वनिता।
प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद इसहाक खान का आदाब नमस्कार। देश विदेश में रह रहे सभी श्रोताओं को धन धान्य से परिपूर्ण बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भारत भारती की आज की कड़ी में शामिल है भारतीय कृषि में त्योहारों की अवधारणा, भारत के फसलोत्सव और इतिहास के आईने में जालियांवाला बाग। श्रोताओं, मानव समाज के विकास की गति को निर्धारित करने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का इतिहास संस्कृति के विकासमान मूल्यों का इतिहास है। आखेट युग, पशुपालन युग, कृषि युग और औद्योगिक युग में उत्पादन संबंधों को निर्धारित किया होगा और इसी द्वंद्वात्मकता के आधार पर संस्कृति विकसित हुई होगी। मानव समाज के विकास की प्रक्रिया में जब कृषि युग आया होगा तब तत्कालीन मानव समाज ने भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली जंगली चारों के बीज को सुनिश्चित करने की बात सोची होगी। उनकी कल्पना में जब कृषि का मॉडल बना होगा तब उन बीजों की कृषि शुरू की गई होगी। बेहद अनगढ़ प्रौद्योगिकी के द्वारा जंगल को साफ किया गया होगा, उस पर हल चला होगा, बीज डाले गए होंगे, बरसात में उसे अंकुरित किया होगा और धरती की आंचल जब धानी होकर लहराने लगा होगा तब उत्सव मनाया होगा। प्रकृति में उगने वाले पेड़ पौधों के फल फूल या दोनों के उपयोग से भोजन की संस्कृति विकसित हुई होगी। कृषि संस्कृति में प्रकृति के रहस्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाओं की व्यंजना दिखाई देती है। कृषि संस्कृति में समूचा गांव एक इकाई के रूप में कार्य करता है। शरीर के विभिन्न अंगों की तरह अलग अलग जातियां होती हैं, किंतु ये सभी जातियां कहीं न कहीं कृषि से जुड़ी रहती हैं और उस संस्कृति को विकसित करने में भी अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। कोई भी त्योहार ले लीजिए, कृषि कर्म से उनका संबंध अलग नहीं है। अगर हम हिंदी काल दर्शन के हिसाब से चैत्र माह को प्रथम माह के रूप में देखते हैं तो चैत्र में जो वैशाखी मनाते हैं ये नए फसल आगमन का ही प्रतीक है। वैशाखी पूरी तरह से नए फसल के आमदगी का त्योहार है और इसमें किसान खुशी से झूम उठता है।
खेतां विच रब वसदा सानू स्वर्ग दी लोड़ कोई ना सानू साइस धरती दी सानू साइस धरती दी एदे नालों प्यारा हार कोई ना साडे खेतां विच रब वसदा बई रब वसदा।
बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों के रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1999 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा है जिसमें हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। वर्षा शुरू होते ही कई तरह के त्योहारों के दर्शन होते हैं, कजरी, कर्मा, खेत पूजा, हल पूजा। एक त्योहार गांव में अभी भी है, धान के पौध तैयार किए जाते हैं और एक अलग खेत तैयार करके उनकी रोपाई की जाती है। रोपाई जब समाप्त हो जाती है तब सारे किसान मजदूर या घर के सारे सदस्य मिलकर पहले तो धान के खेत की जो कीचड़ होती है उसकी होली खेलते हैं, फिर घर आकर के नहा धोकर साफ सुथरे होकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, गीत संगीत होता है और धान के पौधे को जो किसान जमींदार होता है उसकी उंगलियों में बांध करके नेग और दस्तूर लेने की परंपरा भी देखी जाती है। तो कृषि का त्योहारों से ये अटूट रिश्ता अभी भी कायम है। दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दशहरा, शारदीय नवरात्र और अगर हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों के त्योहारों को भी लें, बिहू, पोंगल और अन्य गुड़ी पड़वा, नव संवत्सर, इन सब का कहीं न कहीं कृषि से ही संबंध लगता है। पोंगल दक्षिण भारत का एक अहम त्योहार है। कृषि से संबंधित यह त्योहार मुख्यतः 4 दिनों तक चलता है। पोंगल प्रति वर्ष 13 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। तो श्रोताओ, इस तरह भारतीय कृषि में त्योहारों की अवधारणा साबित होती है। आप सुन रहे हैं भारत भारती। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में त्योहारों और उत्सवों का आदिकाल से ही काफी महत्व रहा है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर मनाए जाने वाले सभी त्योहार समाज में मानवीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता और सद्भावना को बढ़ाते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे की भावना मानवीय गरिमा को समृद्ध प्रदान करना होता है। यही कारण है कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों और उत्सवों में सभी धर्मों के लोग आदर के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। श्रोताओं, भारतीय कृषि में त्योहारों की अवधारणा की पृष्ठभूमि में आइए सुनते हैं एक वार्ता भारत के बैसाखी फसलोत्सव। वार्ताकार हैं डॉक्टर वनीता।
भारत मेलों, पर्वों, त्योहारों का देश है। ये पर्व धार्मिक हो, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ऋतुओं से संबंधित या फसलों से जिस किसी विषय से भी संबंधित हो, पर ये सच है कि ये हमारे देश व जनमानस की जान है, शान है, पहचान है। अप्रैल के महीने में बैसाखी के अतिरिक्त और भी कई पर्व विशेषनीय हैं, जैसे कि रामनवमी, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, आचार्य वल्लभ जयंती वगैरह। इसी प्रकार 14 अप्रैल तमिल में और केरला में बड़ी धूमधाम से नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा पंजाब, उत्तरी भारत में बैसाखी का महीना कृषि से संबंधित फसलों के तैयार होने के बाद काटने के विशेष त्योहार से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अप्रैल के माह में ईस्टर, गुड फ्राइडे, रेलवे वीक और मानव एकता दिवस भी मनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भारत के सब प्रांतों में अप्रैल का महीना प्रासंगिक है। इसका विशेष मंतव्य प्रतीक है, कहीं खुशी, कहीं समृद्धियाँ, कहीं बुआई, कहीं कटाई, इन सब बातों को हम जायजा लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो पंजाब में अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल की बैसाखी का त्योहार सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इससे हमारे कृषि प्रधान राज्य में सबसे अधिक खुशियां व समृद्धियां फसलों व पंजाब के गांवों के सभ्याचार से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में ये किसानों का त्योहार है। उत्तर भारत में हाड़ी की फसल, विशेषतः कनक जो यहाँ की प्रमुख फसल है, बैसाख में पककर तैयार हो जाती है। इसीलिए किसानों की साल भर की प्रतीक्षा, जिसमें उनकी आर्थिक, सामाजिक या मानसिक, वो लोग उमंग से भर जाते हैं। इसीलिए सारे भारत में और विश्व में भी भांगड़े, गिद्दे, लोकगीतों से भरपूर, कई कई दिनों से मेले की तैयारियां और खाने पहनने में व्यस्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित दिन माना जा रहा है। पंजाब की धरती यूं लगता है चारों ओर सोना बिखेर रही हो। किसान वर्ग पंजाबी सभ्याचार मेले की कशिश में सारे गमों को भूल कर अपनी साल भर की मेहनत बाद जो धरती सोना बिखेर रही है उसका आनंद लेते हैं। इस मौके पर विशेषतः मुझे पंजाबी कवि धनीराम चात्री की एक कविता मेले विच जट की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें वो कहते हैं, तुम्बे नाल पांतो पांत बोलियां, हाड़ विच जट्टा ने मनाईया होलियां, छिंज दी तैयारी होई ढोल वज दे, कस के लंगोटे आए शेर गज दे, लिश्क दे ने पिंडे गुन्ने होए तेल दे, मार दे ने छाला दूले डंड पेल दे, किसू नू सुरैना पहले हाथ टा गया, मार दा दमा में जट मेले आ गया। बैसाख महीने से संबंधित हमारे बहुत से लोक गीतों और 12 माहों में भी इस माह का वर्णन आता है। बैसाख पक्की दाख निमाए, फूलों पे लाली आई निमाए, भर यौवन की धूप मेरे सिर ऊपर आई, तुम बिन प्यारे रब जी मेरा भंवर निमाना, निमाए लड़का नादान कब होगा सियाना। तो पंजाब में दाख, जहाँ कनक की फसल होती है तो दाख, अंगूर जिसे कहते हैं, खूब होता था, तो उसका जिक्र ये 12 माहों में बार बार आता है। बैसाख के महीने जी बैसाखी आई, तुम परदेश में लाल जी उदासी छाई। पंजाब में बैसाखी के मेले के साथ साथ दमदमा साहिब की बैसाखी, पटियाले की बसंत पंचमी, चरक का मेला, जर का मेला बहुत लोकप्रिय हैं। इन मेलों में दुकानें सजाई जाती हैं, सारी सारी रात जश्न, टप्पे, गीत, लुड्डी, गिद्दा, कबड्डी, अखाड़ों में कार्यक्रम होते हैं, कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। जहां 13 अप्रैल नव वर्ष और फसलों की कटाई बाद जश्न और खालसा पंथ की नींव का सूचक है, इस तरह से 13 अप्रैल का ये दिन ऐतिहासिक स्मृति भी दिवस माना जाता है। दक्षिण भारत के लोग 14 अप्रैल को नव वर्ष मनाते हैं। हिंदू मिथिहास के मुताबिक इस दिन ब्रह्मा ने संसार का सृजन किया था, इसे पुदंथु वस्थुकल कहा जाता है, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी को चावल के रंगीन आटे से मोटिफ तैयार करके कोलम बनाती हैं, तथा कच्चे आम, नीम और गुड़ से तैयार मिठाई बनाकर सबको सेवन कराती हैं। तो ये सेवन फूड प्रोडक्ट की बहुतात का भी सूचक है और खुशहाली का भी। इसी प्रकार केरला में बैसाख के महीने 14 अप्रैल विशु का पर्व बड़ा लोकप्रिय है। ये भी नव वर्ष का सूचक है जिसमें कनी की तैयारी होती है। भारत में कोई भी त्योहार हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या संस्कृति या कुछ और, परंतु उसमें धार्मिक रस्मों को जोड़कर उसे और भी विशेष बना लिया जाता है। इसी तरह से आसाम में बिहू का पर्व अप्रैल के महीने सब जाति वर्ग धर्म के लोगों के भेदभाव मिटाकर निरपेक्ष रूप में मनाया जाता है। रोंगली बिहू बीज बोने का त्योहार है अप्रैल में। इसमें 3 बिहू मनाए जाते हैं। अप्रैल में धान की बिजाई करते हैं, कार्तिक बिहू में बिजाई खत्म होकर पौधों की ट्रांसप्लांटेशन होती है, और माघ के बिहू में झाड़ काटकर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जैसे हम बैसाखी में करते हैं। तो ये बिहू असम में 3 ऋतुओं का भी सूचक है, और इन 3 बिहू में सारा असम नाच गाने और नृत्य में यूं झूमता है कि एक अपना ही दृश्य बनाता है। वैसाख के महीने कश्मीर में वादी में भी चारों ओर ट्यूलिप, यानी के जिसे हम गुल लाल कहते हैं, गुल लाला, ये फूल खिलते हैं। भारत का ये हॉलैंड लगता है, स्विट्जरलैंड लगता है। श्रीनगर मानो डल झील और इसकी वादी ने सर्दी के बाद गुलों लालों की रंग बिरंगी ओढ़नी ओढ़ ली हो। सैलानी पर्यटक अपनी आंखों में, अपने कैमरों में ये नजारा भर भर ले जाते हैं। 7 दिन यहाँ सैलानियों के लिए मेला लगता है, और कश्मीर में लोक गीत, लोक साज और सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए जाते हैं। इस प्रकार सारे भारत में कहीं नव वर्ष के संदर्भ में, कहीं फसलों के संदर्भ में और उनकी बुआई या कटाई के परिप्रेक्ष्य में सब तरफ हर्ष उल्लास का मौसम वातावरण बना रहता है। इन त्योहारों के पीछे हमारे कृषि प्रधान भारत की ग्रामीण अवचेतन, उनकी मेहनत, उनका भूमि से लगाव, विकास, खुशहाली, बहुत से पहलू ऐसे हैं जो इस माह को विशेष विशेष बनाते हैं।
सुन के रहत की आवाजें, सुन के रहत की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे,
लगे कहीं शहनाई बजे।
आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे,
दुल्हन की तरह हर खेत सजे।
मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती।
भारत के बैसाखी फसलोत्सव अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर वनिता। आप सुन रहे हैं भारत भारती। श्रोताओं, जैसा कि आप जान चुके हैं, नव फसल का त्योहार है बैसाखी। लेकिन एक बैसाखी वो भी है जो 13 अप्रैल 1919 की याद दिलाती है। इसी दिन की घटना से जुड़ी है जलियांवाला बाग की घटना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बागीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। अगर किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो ये घटना, ये जघन्य हत्याकांड ही था। गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रोलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई बंदूकें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए अपील की। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से पट गया। बाद को उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगु ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया।
वंदे वंदे
वंदे मातरम।
श्रोताओं, बैसाखी जब जब हम मनाएंगे, जलियांवाला बाग की याद बरबस आ ही जाएगी।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती। विषय थे भारतीय कृषि में पर्वों की अवधारणा, भारत के फसलोत्सव और इतिहास का रक्तिम पृष्ठ जलियांवाला बाग। प्रस्तुत थी मोहम्मद इसहाक खान की और वार्ताकार थी डॉक्टर वनिता। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब समय हुआ है सामयिक वार्ता का। विषय है यूक्रेन संकट समाधान से दूर। आलेख है पत्रकार विकास खन्ना का।
संकटग्रस्त यूक्रेन दूसरी समस्याओं में घिरता जा रहा है।
रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप हारने के बाद यूक्रेन अब पूर्वी शहर लुहांस्क और दोनेत्स्क में विद्रोह का सामना कर रहा है, जहां उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को घेर लिया है। कीव से स्वतंत्र होने की घोषणा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अगले महीने जनमत संग्रह कराने का संकल्प व्यक्त किया है, जो यूक्रेन के साथ उनके भविष्य के संबंधों का निर्णय करेगा। इसके जरिए ये फैसला होगा कि वे यूक्रेन का हिस्सा बने रहते हैं या फिर रूस के साथ मिलते हैं। जैसा कि यूक्रेन की अंतरिम सरकार ने आशंका जताई है कि रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बाहर निकालने की कोई भी कार्रवाई रूस को दखल देने के लिए आमंत्रित करने जैसी है। अगर रूस की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन में दखल दिया तो इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना कठिन है। ये आशंका है कि रूस की तरफ से कोई भी सैनिक कार्रवाई भविष्य में पूरब और पश्चिम के बीच मुकाबला शुरू कर देगी, जिस पर काबू पाने में बरसों लग सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई से आशंकित नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन में जारी आपदा का साथ दिया तो ये उसकी ऐतिहासिक गलती होगी। एक अस्पष्ट धमकी के तौर पर उन्होंने कहा कि इसके रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से रूसी भाषा बहुल पूर्वी इलाके में तनाव तेजी से उभरा है। ये तब हुआ जब मॉस्को समर्थित यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को महीने भर चले प्रदर्शन और खूनी संघर्ष के बाद बलपूर्वक सत्ता से बेदखल कर दिया गया और यूरोप समर्थक सरकार का गठन किया गया। कई प्रदर्शनकारियों ने कीव की सरकार की यूरोप समर्थक नीतियों से असहमति जताई है और जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये रूस के साथ व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस अभी भी यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक सहयोगी है। आम लोगों के लिए रूस ने अपना दिल और झोली दोनों बंद कर दिया है। कीव द्वारा प्रदर्शनकारियों को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम 11 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। संकट खत्म करने के लिए अंतरिम सरकार ने विद्रोहियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया है, जिसमें असफल रहने पर अधिकारियों ने बल प्रयोग की चेतावनी दी है। अगर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अधिकारी बल प्रयोग करते हैं तो हालात के नियंत्रण से बाहर चले जाने की आशंका है। प्रदर्शनकारियों के किसी भी तरह के समझौता न करने की भावना के साथ ये कोई भी अनुमान लगा सकता है कि अगले कुछ दिनों में हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं। पश्चिम और क्रेमलिन दोनों ही पक्षों के साथ समस्या ये है कि उनका यूक्रेन में अपना एजेंडा है, लेकिन किसी भी पक्ष का जमीनी स्तर पर पूरा नियंत्रण नहीं है। एक उम्मीद ये है कि कोई भी पक्ष ऐसा परिपक्व निर्णय लेने की जल्दबाजी में नहीं है जो अगले हफ्ते प्रस्तावित शांति वार्ता को खतरे में डाल दे। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ये पहली सीधी वार्ता होगी। रूस और पश्चिम में गहरे संदेह की भावना के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर यूक्रेन में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। रूस कहता है कि ये पश्चिमी है जो इस इलाके में निरर्थक और खतरनाक नीति लागू करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम कहता है कि पूरब में जारी घटनाक्रम मॉस्को द्वारा तैयार योजनाओं के अनुरूप ही है। रूस मांग कर रहा है कि कीव रूसी भाषाई इलाकों में रुचि ले, लेकिन पश्चिम और यूरोप के बीच संघर्ष प्रभाव को लेकर है, जिसमें यूक्रेन के नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से पूर्वी यूक्रेन में कई बार संकट की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन रूस के साथ विलय को लेकर समर्थन उस कदर नहीं है जैसा कि क्रीमिया में था। क्रीमिया जहां रूसी नागरिकों का बहुमत है, उससे अलग पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन के नागरिक बहुसंख्यक हैं, जबकि उनकी पहली भाषा रूसी ही है। यूक्रेन के संघीकरण की मांग स्वीकार करने के लिए कीव पर दबाव बनाने की कोशिशों के तहत सीमा पर भारी मात्रा में सेना का जमावड़ा हो गया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस की सेना के यूक्रेन के दूसरे इलाकों में दखल देने की स्थिति में कड़े कदम उठाने की धमकी दी है। इसके जवाब में रूस ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई में कटौती करने की धमकी दी है, जिसका ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन के रास्ते यूरोपियन यूनियन पहुंचता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूक्रेन भी काफी हद तक रूस पर ही निर्भर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंतित नहीं दिखते हैं। आज जो हालात हैं उन्हें देखते हुए संकट के समाधान के लिए शांतिपूर्ण समझौते और कूटनीति की जरूरत है। इसके पहिए गति के लिए तैयार हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते होने वाली चतुष्कोणीय वार्ता तनाव को समाप्त करने में मदद करेगी।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सामयिक वार्ता। विषय था यूक्रेन संकट समाधान से दूर और आलेख था पत्रकार विकास खन्ना का। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए अब सुनते हैं संपादकीय समीक्षा। आलेख है पत्रकार बिपिन कुमार तिवारी का और वाचक हैं निशांत केतु।
भारतीय रुपये की हाल में हुई मूल्य वृद्धि पर भारतीय समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय में टिप्पणियां की हैं। समाचार पत्रों के मुताबिक अर्थव्यवस्था अच्छी होती प्रतीत हो रही है और पिछले कुछ महीनों से रुपये की स्थिति में स्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली है। पत्र कहते हैं कि चालू खाते को मजबूत करने के लिए निर्यात बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिसमें मजबूत रुपया अवरोधक होगा। समाचार पत्रों ने दूसरों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तारीफ की है। द हिंदू अपने संपादकीय बदलती धारणा में लिखता है कि रुपये की कीमत में वृद्धि और एक डॉलर के मुकाबले इसका 60 से नीचे आना अहम गतिविधि है। एक स्तर पर इसकी हालिया मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निवेशकों और खास तौर से विदेशी निवेशकों की धारणा को बदल सकती है। सिर्फ 7 महीने पहले रुपया लगातार नीचे गिर रहा था और 28 अगस्त 2013 को ये अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जब एक डॉलर की कीमत 68.36 रूपये पहुंच गई। आर्थिक मूल सिद्धांत कमजोर हो गए थे और सबसे अहम ये है कि ये ऐसे प्रतीत भी हो रहे थे। जीडीपी 5% के नीचे पहुंच गई थी, जहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। अगर आज भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी दिख रही है तो उसके कारण दूसरे आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों में तलाशने होंगे। पहले के मुताबिक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चालू खाता घाटे में तेजी से कमी आई, जो कि संतोषजनक कारोबारी संतुलन की वजह से था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जीडीपी के अवांछनीय रूप से 5% तक जाने के समय से चालू खाते का घाटा चालू वित्त वर्ष की तिमाही में 2.3% के प्रबंधनीय स्तर पर रहा। गैर आर्थिक कारकों में मई में कारोबार के अनुकूल सरकार आने की उम्मीद ने विदेशी निवेशकों को दूसरे देशों से सस्ता कर्ज लेने की तुलना में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसने स्टॉक सूचकांक को उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया और डॉलर के मुकाबले रुपये को ऊपर ले गया। समाचार पत्र के मुताबिक रुपये की तेज वृद्धि रिजर्व बैंक के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां खड़ी करती है। ऐसी खबर है कि जहां कभी रुपये की गिरावट को रोकने के लिए डॉलर को बेचने की नौबत थी, जो कि जमा पूंजी पर भी चोट कर सकती थी, वहीं अब हम डॉलर खरीद रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से हमारे खजाने की रकम काफी बढ़ सकती है और रुपये की अस्थिरता के खिलाफ एक बीमा का काम कर सकती है। वहीं ये कदम रुपये को बाजार में अत्यधिक रूप से ले आएगा और महंगाई दर को भी बढ़ावा देगा। रुपये के सही स्तर का निर्धारण हमेशा ही कठिन कार्य रहा है, वो खास तौर से तब जब चालू खाता घाटे में तेज सुधार निर्यात में निरंतरता की वजह से नहीं, बल्कि सोने और गैर तैलीय पदार्थों की आयात की कमी की वजह से हो। द इकोनॉमिक टाइम्स अपने संपादकीय व्हाट्स रियली ड्राइविंग द रैली में लिखता है कि 3 फरवरी से भारतीय इक्विटी बाजार ने उत्तर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया है और 2 महीने के थोड़े ही ज्यादा समय में 12% से ज्यादा हासिल किया है। ये आंखों को चौंधियाने वाला प्रदर्शन है, जो बताता है कि दुनिया भर के बढ़ते बाजार में क्या कुछ हो रहा है। मोर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के मुताबिक ब्रिक्स देशों, जहां बाजार के प्रदर्शन का मापक सूचकांक है, उनमें से ब्राजील ने जनवरी में अब तक 5% से कम हासिल किया। वहीं रूस में 17% और चीन में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई। सबको मिलाकर देखें तो सभी बढ़ते बाजारों में जनवरी से 1.2% की वृद्धि हुई है। बढ़ते बाजारों में व्यापक तौर पर छाए अंधकार और बर्बादी के बीच भारत का प्रदर्शन रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ की तरह है। दूसरे ब्रिक्स देशों की तुलना में उदाहरण के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत ज्यादा मजबूत हैं। ब्राजील, जिसका विकास ज्यादातर उपयोगी वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर है, उच्च महंगाई की वजह से मंदी से जूझ रहा है। भारत को महंगाई पर लगाम लगाने में सफलता मिली है, जिसकी वजह से घाटे और जमा पूंजी पर नियंत्रण रखा जा सका है। इससे रुपये की गिरावट, जैसा कि पिछले साल अगस्त में देखा गया था, रुकी है। सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से हरी झंडी दे रही है, इसीलिए इंजीनियरिंग कंपनियों को बढ़त मिली है।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संपादकीय समीक्षा। आलेख था पत्रकार विपिन कुमार तिवारी का और वाचक थे निशांत केतु। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक गीत फिल्म दूर गगन की छांव में से।
चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले संदेशा लाए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक है।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक गीत फिल्म दूर गगन की छांव में से, जिसे स्वर और संगीत दिया था किशोर कुमार ने। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। भारतीय समय के अनुसार रात के 2:15 बजने को हैं। इंग्लैंड तथा पश्चिम यूरोप के लिए 7550, 9950 और 11670 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित ये सभा अब समाप्त होती है।